वर्तन प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन आदिदेव प्रजा पिता श्री बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम ओम सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे
शांति ओम शांति सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग आज सतगुरु बाबा ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि अभी समय कौन सा चल रहा है। बाबा कहते हैं अभी कयामत का समय चल रहा है। कयामत का समय सभी धर्मों में वर्णित है, जबकि सबके हिसाब किताब चुकतू होने का समय है, जबकि सबको धर्मराज की सजाएं खाकर वापस घर जाने का समय है। तो अभी वो समय है और हर धर्म में इसका वर्णन है, द डे ऑफ जजमेंट कहते हैं, जब भगवान आकर के सबको न्याय देते हैं। द डे ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं, कयामत। तो हिसाब किताब चुकतू होने का ये समय है, जबकि बाप स्वयं आकर के सब आत्माओं को वापस घर ले जाते हैं। इसीलिए भारत में शिव का एक नाम और है, कौन सा? महाकाल। महाकाल का बहुत बड़ा मंदिर है उज्जैन में, महाकालेश्वर। तो वो तो काल आता है, एक को ले जाएगा, दो को ले जाएगा, कहते हैं ना काल खा गया। लेकिन महाकाल जब आता है तो सबको हिसाब किताब चुकतू करा करके वापस घर ले जाता है। तो अभी वो समय है। कृपया आवाज कम करें भैया, आवाज कम करो, धीरे धीरे रखो कुर्सी, बहुत आवाज आ रहा है। भाई बहने बढ़ गए हैं, कुर्सियां रख रहे हैं पीछे से, बहुत धीरे से रखो। दूसरा बाबा कहते हैं शिव के तो बहुत नाम है, लेकिन शिव के लिए कहा जाता है शिव भोला भंडारी है। तो भोला भंडारी आकर के सबके भंडारे भरपूर करता है। वैसे भी कहते हैं, है ना, शिव का शिव भोला भंडारी, जो आकर के सबके सबको काल से तो मुक्त करता ही है, लेकिन साथ साथ सबके भंडारे भी भरपूर करता है। शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक दूर। तो सबके काल कंटक भी दूर हो रहे हैं, भंडारे भी सबके भर रहे हैं, सबको घर भी लेके जा रहे हैं। इस समय बाबा का कितना बड़ा कार्य चल रहा है। तो ऐसे समय पर हमें क्या करना है? हमें बस बाबा को याद करना है। और बाबा कहते हैं मैं आकर के सबका उद्धार करता हूँ। सबका माना सबका, किसी को भी छोड़ता नहीं हूँ। और सब में क्या क्या आ जाता है? राजा महाराजा, तो यहाँ तक भी बाबा कहते हैं गणिकाएं कुब्जाएं, क्या क्या वर्णन आता है, सबका मैं उद्धार करता हूँ। तो क्या उद्धार करते हैं? सबको घर ले जाता हूँ, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देता हूँ। अभी वो समय चल रहा है। तो हमें क्या करना है? बाबा कहते हैं बस जो बाबा श्रीमत देते उस पर चलना है, बाबा को याद करना है। और कल भी बाबा ने कहा नई दुनिया के लिए पवित्र बनना है। तो पवित्र भी बनना है, योगी भी बनना है। और शिव बाबा भंडारे भरपूर कर रहे हैं, बस उन भंडारों उस भंडारे से अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है और पावन बन करके बाप के साथ घर जाना है। तो सुनते हैं बाबा के माँ वाक्य आज 12/2/2026 है। मीठे बच्चे, ये कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं, अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। मीठे बच्चे, ये कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। सब मूर्छित हुए पड़े हैं, सब कब्र में पड़े हुए हैं, मर चुके हैं, फिर बाबा आकर के नया जीवन देते हैं। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। प्रश्न है, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? शिव को भोला भंडारी क्यों कहा जाता है? उत्तर है, क्योंकि शिव भोला नाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं, कुबुजाओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। कितना बड़ा कार्य करते हैं भगवान आकर। अहिल्याओं, गणिकाओं, कुबजाओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। आते भी देखो, पतित दुनिया और पतित शरीर में है, तो भोला हुआ ना। कार्य इतना बड़ा करते हैं, लेकिन आते हैं पतित दुनिया में, पतित मनुष्य के तन में, तो बाबा कहते तो भोला हुआ ना। भोले बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे अब अमृत पियो। सब कब्र दाखिल हो गए हैं, मर गए हैं, हाँ तो कब्र में पड़े हैं, अभी अमृत वर्षा बाबा कर रहे हैं तो जिससे जाग जाते हैं। अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। तो बाबा आए हैं, कहाँ से आए हैं? तो गीत बजा है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ये भगवान का देश नहीं है, हमारा भी देश नहीं है। हम भी उसी निराकारी दुनिया के रहवासी हैं। हम भी इस पराये देश में अभी आ गए हैं। अब बाबा आया है अपने देश ले जाने। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर के कान कर्म इंद्रियों द्वारा गीत सुना। दूर देश के मुसाफिर आते हैं, तुम भी मुसाफिर हो ना। बाबा भी मुसाफिर, हम भी मुसाफिर। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब मुसाफिर है। किसी भी आत्मा का ये दुनिया घर नहीं है, सब मुसाफिर है। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है। हाँ, ये कोई घर नहीं है आत्माओं का। आत्मा तो है निराकार, निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं। उसको कहा ही जाता है, उस धाम को क्या कहा जाता है? निराकारी आत्माओं का घर वा देश वा लोक। इनको क्या कहेंगे? इस दुनिया को क्या कहेंगे? जीव आत्माओं का देश। और वो है आत्माओं का देश, वो है आत्माओं का देश। फिर आत्माएं यहाँ आकर के शरीर में जब प्रवेश करती है तो निराकार से साकार बन जाती है। ऐसे नहीं, हाँ क्या नहीं, निराकार से साकार तो बनती है, लेकिन क्या नहीं, ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है। क्योंकि यही समझते ना, आत्मा का, परमात्मा का कोई रूप नहीं है। निराकार सी दुनिया से साकार में आती है तो कोई तो रूप है। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, बाप का भी रूप है, नाम भी है। इतनी छोटी आत्मा कितना पाठ बजाती है इस शरीर द्वारा। हर एक आत्मा में पाठ बजाने का कितना बड़ा रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार भर जाता है, फिर कितनी बार भी रिपीट करो वो चलेगा। वैसे आत्मा भी इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है। हाँ, आत्मा क्या है? इस शरीर का रिकॉर्ड है। ये शरीर जैसे ग्रामोफोन है, और उस ग्रामोफोन का रिकॉर्ड है आत्मा। आत्मा जैसे इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है जिसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जैसे बाप निराकार है वैसे आत्मा भी निराकार है। कहाँ कहाँ शास्त्रों में लिख दिया है कि वो नाम रूप से न्यारा है। परमात्मा निराकार है तो निराकार का क्या अर्थ ले लिया है कि नाम रूप से न्यारा है। परंतु नाम रूप से न्यारी तो कोई वस्तु होती नहीं। अब जिसका न नाम है न रूप है फिर वो चीज क्या होगी, वो तो चीज ही नहीं होगी कुछ भी। तो नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। आकाश भी पोलार है, हाँ भले दिखाई देता पर है तो पोलार ना, तो पोलार है, नाम तो है ना आकाश। बिगर नाम कोई चीज होती नहीं है। मनुष्य कहते हैं परम पिता परमात्मा। अब दूर देश में तो सब आत्माएं रहती है, ये साकार देश है, इसमें भी दो का राज्य चलता है। इस साकार दुनिया में दो का राज्य चलता है, एक राम का राज्य और दूसरा रावण का राज्य, ये दो राज्य चलते हैं। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बाप कभी बच्चों के लिए दुख का राज्य थोड़ी बनाएंगे, कोई पिता अपने बच्चों के लिए दुख का स्थान तो नहीं बनाएंगे ना। कहते हैं ईश्वर ही दुख सुख देते हैं। अब दुख और सुख इस संसार में है लेकिन मनुष्य क्या समझते हैं, ये भगवान ही देते हैं दुख और सुख। तो बाप समझाते हैं मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता हूँ, मेरा नाम ही है दुख नहीं देता हूँ। क्या नाम है भगवान का, दुख हरता सुख करता। अब ये तो मनुष्यों की भूल है जो कह दिया है कि भगवान ही दुख देता है, भगवान ही सुख देता है, इस पर कितने गीत बने हुए हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चों को कभी बाप दुख नहीं देते तो ईश्वर कभी दुख कैसे देंगे। इस समय है ही दुख धाम, आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही दुख मिलता है, सुख की रत्ती भी नहीं। रत्ती रत्ती पता है क्या होती है ना, सोने की जैसे तोला होता है उससे भी बहुत कम रत्ती, इतनी तो रत्ती भी नहीं, सुख की रत्ती भी नहीं। सुख धाम में फिर दुख होता ही नहीं। तो बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं। अभी तुम हो संगम पर, इसको नई दुनिया तो कभी नहीं कहेंगे, चारों ओर घोर अज्ञान अंधियारा है। बाबा कहते इसको नई दुनिया तो कभी नहीं कहेंगे। नई दुनिया का नाम ही है सतयुग, वही फिर पुरानी होती है तो उनको कलयुग कहा जाता है। नई चीज अच्छी और पुरानी चीज तो खराब दिखाई देती है, तो पुरानी चीज को खलास किया जाता है। खराब हो जाती है तो फिर खलास किया जाता है। मनुष्य विष को ही सुख समझते हैं, है ना। कलयुग में विषय विकार मिटाओ एक तरफ कहते हैं लेकिन कई समझते इसके बिना तो दुनिया कैसे चलेगी, तो विष को ही फिर सुख समझते हैं, समझते ये नेचुरल है विकार। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। फिर कहते हैं एक तरफ कहते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए, और फिर क्या कहते हैं तेरे भाने सर्व का भला। हाँ तो तुम आओगे तो फिर सबका भला हो जाएगा, सब ये विष खत्म हो जाएगा। तो तेरे भाने सर्व का भला, आप जो आकर करेंगे उसका ही उससे ही भला होगा। सर्व का भला भगवान ही आकर के करते हैं, तो जो भी वो करेंगे उसे भलाई होगा। नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य तो बुरा काम ही करेंगे। ये तो अब बच्चों को पता पड़ा है कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, अभी 550 वर्ष मनाया था गुरु नानक का, तो 500 वर्ष हुए, तो 550 वर्ष हुए। फिर कब आएंगे, 500 वर्ष हुए तो फिर कब आएंगे? तो कहेंगे जब सिखों से पूछते हैं ना, तो गुरु नानक को तो 500 साल हुए, 500 साढ़े 500 साल, फिर वो कब आएंगे? तो क्या कहते हैं? कहते हैं उनकी आत्मा तो ज्योति ज्योत समा गई, फिर कैसे आएगी? वो तो ज्योति ज्योत में समा गई, फिर वो कैसे आएगी? और तुम कहेंगे, तुम क्या कहेंगे? ज्योति ज्योत समाई नहीं, कोई भी आत्मा ज्योति ज्योत ऐसे नहीं समाती है। तो तुम क्या कहेंगे? तुम कहेंगे फिर कब आएंगे गुरु नानक? कब आएंगे? 4500 साल के बाद। देखो अंगे अखरे विद फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं, फिर 4500 साल के बाद फिर आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती है, इस समय सब तमो प्रधान है, इसको कयामत का समय कहा जाता है, सबके कब्र दाखिल होने का समय कहा जाता है, सभी मनुष्य जैसे मरे पड़े हैं, सबकी ज्योति उजाई हुई है, बाप आते हैं सबको जगाने, सब मरे पड़े हैं, बाबा आए हैं सबको जगाने, बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उन्हों को अमृत वर्षा से जगाए साथ ले जाएंगे, माया रावण ने काम चिता पर बिठाए कब्र दाखिल कर दिया है। तो माया कब्र दाखिल करती है और भगवान आके कब्र से जगा करके घर ले जाते हैं। सभी सो गए हैं कब्र में, तो डेड बॉडी क्या सोई हुई है, तो सभी सो गए हैं। अब बाप ज्ञान अमृत पिलाते हैं, अब ज्ञान अमृत कहाँ, अब ज्ञान अमृत कहाँ और वो पानी कहाँ? सिख लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़े धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं अमृतसर में, जो जहाँ सोने का सोने का मंदिर है अपना अमृतसर में, तो हर साल कैसे उस सरोवर को साफ करते हैं, बड़े धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, इसीलिए नाम ही रखा है अमृतसर, अमृत का सरोवर। तो अमृतसर अमृत का तालाब। गुरु नानक ने भी बाप की ही महिमा की है, खुद कहते हैं, क्या कहा गुरु नानक ने, जिसका एक ग्रंथ बना है, जो गुरु नानक ने कहा, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवन गुर प्रसाद जपाद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। उस सत्य परमात्मा की ही सारी महिमा है गुरु ग्रंथ साहिब में। तो बाबा कहते हैं, खुद कहते हैं, एक ओंकार सतनाम वो सदैव सच बोलने वाला है, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच, तो सदैव सच बोलने वाला है। फिर सत्य नारायण की कथा है ना, सच बोलने वाला, तो वो सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी कथाएं सुनते आते हैं, अमर कथा, तीजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा, ये तीनों बाबा कहते कथाएं है तो एक ही। कौन सी है? सत्यनारायण की कथा, नर से नारायण कैसे बनना होता है, नारायण से फिर नर कैसे बनते हैं, बस वही सत्यनारायण की कथा है। लेकिन बाबा कहते सत्यनारायण की कथा की तो धनवान हो गए, भूल गए कथा करना तो कंगाल हो गए। तो परंतु कथा कौन सी की वो तो फिर बताते नहीं है, पर बाबा आके बताते कौन सी कथा करने से फिर तुम सत्य नारायण बन जाते हो, और वो भूल गए तो देखो कंगाल बन गए। तो बाबा कहते हैं, फिर कहते शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, अब वो तो सूक्ष्म वतन में रहने वाले, वहां फिर कथा कौन सी सुनाई? अमरनाथ फिर हंस कथा सुनाई, वो फिर कौन सी कथा सुनाई? ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं कि वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाकर अमर लोक में ले जाने लिए आया हूँ। अभी ये अमर कथा हम सुन रहे हैं, जिस अमर कथा से बाबा हमें अमर लोक में ले जाते हैं। मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाता हूँ, बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो उसको अमर कथा सुनाएंगे। हाँ, उसने क्या दोष किया? शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिखती है, सत्य नारायण की सच्ची कथा तो है नहीं। वो सत्य नारायण की जो सच्ची कथा जो सुनाई गई सत्यनारायण की, वो कथा कौन सी है जिससे कंगाल से सिरताज बना, वो तो है नहीं। तो बाबा कहते सत्य नारायण की सच्ची कथा तो है नहीं, तुमने कितनी सत्य नारायण की कथाएं सुनी होगी। सुनी होगी ना, हाँ, हर पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती है। कितनी सुनी होगी, कितनी पूर्णमासियां गुजर गई, कथाएं सुनी होगी। फिर सत्य नारायण कोई बने हैं क्या? उससे वो सुनने से थोड़ी कोई सत्य नारायण बन जाएंगे, और ही गिरते जाते हैं। अभी तुम समझते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। ये है नर से नारायण बनना, नारी से श्री लक्ष्मी बनना। बाबा कहते हैं ये है अमर लोक में जाने के लिए सच्ची सत्य नारायण की कथा, तीजरी की कथा। तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तीजरी की कथा भी कौन सी है? तीसरे नेत्र की कथा, जिस तीसरे नेत्र से तीनों कालों को हम देख सकते हैं। तो आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप समझाते हैं तुम ही गुलगुल पूज्य थे, फिर 84 जन्मों के बाद तुम ही पुजारी बने हो। इसीलिए गायन है तुम ही पूज्य थे फिर 84 जन्म लेते हो पुजारी बनते हो। तो क्या गायन है तुम्हारे लिए? आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। तो बाप कहते मैं तो सदैव पूज्य हूँ, तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। ये है पतित दुनिया। सत्युग में पूज्य पावन मनुष्य थे, और इस समय सब पुजारी पतित मनुष्य हैं। साधु संत तो गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। अब ये अक्षर है राइट, वास्तव में राइट है, ये कोई गलत नहीं है। लेकिन कौन सा राम कौन सी सीता, हाँ बाबा कहते ये नहीं जानते। ये अक्षर है राइट, सब सीताएं ब्राइड्स है। सब क्या है? ब्राइड्स, हाँ, वधू, और शिव बाबा है वर। तो बाबा कहते सब सीताएं ब्राइड्स है। कहते हैं हे राम आकर हमको पावन बनाओ। सब भक्तियां पुकारती है। अब कौन पुकारता है? भक्तियां पुकारती है, सीताएं पुकारती है। तो पुकारता कौन है? आत्मा है, शरीर तो नहीं पुकारता ना, आत्मा पुकारती है हे राम। गांधी जी भी गीता सुनाकर पूरी करते थे, तो कहते थे हे पतित पावन सीताराम। महात्मा गांधी का तो ये बहुत ही सुंदर भजन भी है ना, आप पतित पावन सीताराम का। तो हे पतित पावन सीताराम, अभी तुम जानते हो गीता कोई श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई है। बाबा कहते हैं ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, गीता का भगवान शिव है न कि श्री कृष्ण। पहले तो पूछो गीता का भगवान किसको कहा जाए, कौन होगा गीता का भगवान? अब भगवान कौन, उसमें भी फिर भगवान कौन? तो भगवान तो निराकार को कहेंगे व साकार को कहेंगे। अगर कहते हैं भगवानुवास तो भगवान किसको कहेंगे, निराकार को या साकार को? अब श्री कृष्ण तो है साकार, शिव है निराकार। वो सिर्फ इस तन का लोन लेते हैं, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। शिव को शरीर है ही नहीं, शिव को अपना कोई शरीर है ही नहीं। यहाँ इस मनुष्य लोक में स्थूल शरीर है, बाप आकर सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। बाप की महिमा है, क्या है बाप की महिमा? पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता, सुख करता। अच्छा, हाँ ये सब महिमा तो गाई, फिर अच्छा सुख कहाँ होता है? दुख हरता सुख करता कहते, पर अभी तो सुख है नहीं, तो सुख कहाँ होता है? यहाँ तो हो नहीं सकता इस कलयुग में। सुख मिलेगा कहाँ मिलेगा? बाबा कहते दूसरे जन्म में। सुख मिलेगा दूसरे जन्म में जब पुरानी दुनिया खत्म हो और स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अच्छा, लिबरेट किससे करते हैं? अब वो लिबरेटर है तो वो किससे मुक्त करते हैं? रावण के दुखों से। ये तो दुख धाम है ना। अच्छा, फिर गाइड भी बनते हैं, गाइड भी बनते हैं, रास्ता दिखाते हैं। ये शरीर तो यहाँ खत्म हो जाते हैं, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं। पहले साजन फिर सजनी जाती है। तो बाबा कहते पहले साजन जाता है, वैसे भी विवाह में साजन, उसके पीछे पीछे सजनी होती है। तो पहले साजन फिर सजनी जाती है। अब वो है, हाँ बाबा क्या है? वो है अविनाशी सलोना साजन। अविनाशी सलोना साजन सबको दुख से छुड़ाए, पवित्र बनाए, घर ले जाते हैं। शादी कर, हाँ बाबा लौकिक मिसाल देते हैं, शादी कर जब आते हैं ना, घर में प्रवेश करते हैं दूल्हा दुल्हन की, मतलब शादी तो रिसेप्शन में होगी, हॉल में कहीं हुई होगी, फिर वो जब घर आते हैं तो बाबा कहते हैं शादी कर जब आते हैं तो पहले होता है घोट। सिंधी में घोट को पति कहते हैं। अभी शादी हो गई तो प्रवेश जब करते हैं घर में तो पहले पति प्रवेश करता है, फिर पति के पीछे उसकी पत्नी प्रवेश करती है। तो शादी कर जब आते हैं तो पहले घोट, सिंधी शब्द है घोट माना पति, पिछाड़ी पीछे फिर ब्राइड यानी पत्नी रहती है, फिर बारात होती है। पहले पति प्रवेश करेगा, फिर पत्नी प्रवेश करेगी, फिर पीछे उसके सारी बारात प्रवेश करेगी। अब तुम्हारी माला भी ऐसी है। हमारी माला में क्या है? पहले है फूल, तो फूल क्या है? वो पतियों का पति है ना, फिर मेरु ब्रह्मा सरस्वती, फिर सारी ब्राइड्स बाबा कहते सब सीताएं। अब तुम्हारी माला भी ऐसी है, ऊपर में शिव बाबा फूल, उसे नमस्कार करेंगे, फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, फिर हो तुम, फिर तुम हो, हाँ जो बाबा के मददगार बनते हो। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बने हो। सूर्यवंशी विष्णु की माला कैसे बने हो? शिव बाबा की याद से। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इन्होंने मेहनत की है तब तो पूजे जाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती ने तो मेहनत की है ना, तब तो पूजे जाते हैं। पर ये कोई को पता नहीं है कि माला क्या चीज है, इसलिए शिव बाबा फूल फिर ब्रह्मा सरस्वती डबल बीड, जो पुरुषार्थ करते हैं और फिर पूजे जाते हैं। क्या बात? तो बाबा कहते हैं कोई को पता नहीं कि माला क्या चीज है, ऐसे ही माला फेरते रहते हैं। 16108 की भी माला होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी जाती है, फिर कोई कहाँ से खींचेंगे। बाबा अपना भी मिसाल देते हैं ना, बाबा ने कहा बाबा बॉम्बे में मुंबई में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, मुंबई में है नर नारायण मंदिर, हाँ वो बहुत बड़ा विष्णु का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। तो बाबा वहाँ जाते थे क्योंकि बाबा बॉम्बे में भी रहते थे, बहुत कारोबार बाबा का था तो बॉम्बे भी उनका घर था, तो बाबा बॉम्बे जाते थे तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, फिर वहाँ जाकर के माला फेरते थे। बाबा बताते कितने बड़े वो बक्से में रखी रहती थी 16108 की माला, और वो बड़ा घेराव करके सर्कल में सब बैठते थे और वो माला फेरते जाते थे, एक ही माला वो फेरते जाते थे, आगे बढ़ती जाती थी, फिर दूसरे फेरते थे, फिर लोग आते थे बीच बीच में आके बैठ जाते थे, फिर माला पकड़ते थे, वो भी राम 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 जपते जाते थे, तो सब मिल करके एक ही माला 16108 की माला वो बक्से में रहती थी, वो फेरते थे, तो बाबा भी जा करके फेरते थे। तो बाबा कहते हैं माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे, क्योंकि फूल तो एक ही बाप है ना, फूल को ही राम राम कहते हैं, राम किसको कहते हैं, परमात्मा को, तो वो फूल को ही राम राम कहते हैं। फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं, माथा भी टेकते हैं, ज्ञान तो कुछ भी नहीं, पादरी भी हाथ में माला फेरते रहते हैं, पादरियों के क्रिश्चियन जो उनके जो होते हैं ना पादरी, उनके हाथ में भी माला होती है, तो पादरी भी हाथ में माला फेरते रहते हैं। फिर उनसे पूछो किसकी माला फेरते हो, उनको तो पता नहीं, वो तो कह देंगे क्राइस्ट की याद में फेरते हैं माला, उनको ये पता नहीं है कि क्राइस्ट की खुद आत्मा कहाँ है, क्राइस्ट की खुद आत्मा वो कहाँ है, तुम जानते हो क्राइस्ट की आत्मा कहाँ है, अभी कहाँ है, बाबा कहते हैं अंत में सब आएंगे, तो अभी वो कहाँ है, बाबा कहते हैं अभी वो तमो प्रधान है, क्योंकि आत्मा ने भी कितने जन्म लिए, बाबा ने कहा क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं जो 40 जन्म तो लेती होगी, तो इतनी 40 जन्म लेते लेते वो आत्मा भी तो अंतिम जन्म में है, अब तमो प्रधान है, तुम भी तमो प्रधान बेगर थे, अब बेगर टू प्रिंस बनते हो, भारत प्रिंस था अभी बेगर है, फिर प्रिंस बनते हैं, बनाने वाला है बेगर टू प्रिंस, बनाने वाला कौन, बाप, तो मनुष्य से प्रिंस बनते हो, मनुष्य से राजकुमार बनते हो, एक प्रिंस कॉलेज भी था जहाँ प्रिंस प्रिंसेस जाकर पढ़ते थे, अभी भी है, बहुत का नाम है राजकुमार कॉलेज, कई स्टेट्स में है, तो वहाँ तो प्रिंस जो राजकुमार थे, अनेक रियासतें थी उनके जो राजकुमार थे वो उन कॉलेजेस में पढ़ते थे, राजकुमार कॉलेज, प्रिंस कॉलेज, अभी भी है नाम, नाम तो शायद कुछ बदल भी गए होंगे, लेकिन उस समय राजकुमार ही पढ़ते थे वहाँ उन कॉलेजेस में, तो जहाँ प्रिंस प्रिंसेस जाकर पढ़ते थे, तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्म लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, अब वो जो राजकुमारों के कॉलेज में राजकुमार पढ़ते थे, वो ऑर्डिनरी कॉलेज में नहीं पढ़ते थे, उनके लिए अलग ही कॉलेज होते थे राजकुमारों के लिए, रॉयल फैमिलीज के लिए, लेकिन बाबा कहते तुम अभी राजकुमार तो नहीं हो, पर तुम ये पढ़ रहे हो राजकुमार बनने के लिए, वो तो राजकुमार थे और पढ़ते थे, और हम राजकुमार बनने लिए पढ़ रहे हैं, तो बाबा कहते तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्म लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, ये श्री कृष्ण प्रिंस है ना, उनके 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है, मनुष्य क्या जाने, ये बातें सिर्फ तुम ही जानते हो, भगवानोवाच वो सबका फादर है, तुम गॉड फादर से सुनते हो जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसे कहा ही जाता है जो स्वर्ग स्थापन करते, उसका नाम क्या है, सच खंड, ये है झूठ खंड, सच खंड तो बाप स्थापन करेंगे, ये सब गुरवाणी के शब्द है सच खंड, तो बाबा कहते सच खंड तो बाप स्थापन करेंगे, झूठ खंड रावण स्थापन करते हैं, रावण का रूप बनाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। किसको भी पता नहीं है कि आखिरीन भी रावण है कौन, जिसको मारते हैं फिर जिंदा हो जाता है, हर साल उसको मारते हैं फिर जिंदा हो जाता है। वास्तव में पांच विकार स्त्री के, पांच विकार पुरुष के, यही रावण है, इनको कहा जाता है रावण। उनको मारते हैं, रावण को मारकर फिर सोना लूटते हैं। अब इसका अर्थ क्या है, रावण को मारकर फिर सोना लूटते हैं। वो क्या, कोई पेड़ के पीले पीले पत्ते होते ना, वो पीले पीले पत्ते लेकर के आते का लंका को लूट लिया, क्योंकि लंका को सोने की दिखाते ना, तो रावण को मार करके वो लंका लूटते हैं। अब इसका अर्थ क्या है, तो बाबा कहते तुम भी लंका, रावण को मार करके लंका को जल जाती है लंका, और फिर तुम सोने के महलों में रहते हो। तो तुम सोने के महलों में रहते हो, वो फिर पीले पीले जो सूख गए हैं पत्ते वो लेकर आते हैं, भाई हम लंका लूट करके आए, सोना लेकर के आए। तो बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो ये है कांटों का जंगल, बॉम्बे में बबुल नाथ का भी मंदिर है, तो बाप आकर के कांटों को फूल बनाते हैं। अब सब एक दो को इस समय बाबा कहते कांटा लगाते हैं, कांटा ही लगाते, काम को लो मोह का कांटा लगा रहे हैं, अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं, इसलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है, वही फ्लावर्स जो फूल थे सतयुग के, वही फ्लावर्स फिर कांटे बनते हैं, फिर कांटों से फूल बनते हैं। हम फूल थे फिर कांटे बन गए, अभी कांटे से फिर फूल बन रहे हैं। अभी तुम पांच विकारों पर जीत पाते हो, इस रावण राज्य का विनाश तो होना ही है, आखिरीन बड़ी लड़ाई भी होगी। बड़ी लड़ाई माना थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध तो भी जरूर होगा, आखिरी बड़ी लड़ाई भी होगी, सच्चा दशहरा भी होना है, सचमुच रावण को मरना भी है। हाँ, सच्चा दशहरा भी होना है, रावण राज्य ही खलास हो जाएगा, फिर तुम लंका लूटेंगे। वो पीले पत्ते ले आते, समझ से लंका लूटी, लेकिन बाबा कहते तुम लंका लूटेंगे, तुम लंका लूटेंगे माना सोने की दुनिया में जाएंगे, फिर तुम लंका लूटेंगे, तुमको सोने के महल मिल जाएंगे। क्या देखो बाबा अर्थ क्या बताते हैं, दुनिया में क्या करते हैं, वो पीले पीले पत्ते जो कोई काम के नहीं वो ले आते, समझ से लंका लूटी सोना लाए, पर हम तो बाबा कहते सचमुच सोने की दुनिया में जाते हैं लंका, वो रावण को खत्म कर। तो बाबा कहते हैं तुमको सोने के महल मिल जाएंगे, अभी तुम रावण पर जीत प्राप्त कर स्वर्ग का मालिक बनते हो, बाबा सारे विश्व का राज्य भाग्य देते हैं, इसलिए शिव बाबा को क्या कहते हैं, भोला भंडारी। शिव भोला भंडारी, गणिकाएं अहिल्याएं कुबजाएं सबको बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। तो कितना भोला है, आते भी हैं पति दुनिया में। उस दिन बाबा ने कहा ना, मैं गरीब निवाज हूँ, श्री कृष्ण तो गरीब निवाज नहीं है, मैं हूँ। आज बाबा कहे मैं शिव भोला भंडारी हूँ। कितना भोला है, आते भी हैं पतित दुनिया पतित शरीर में, बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है, जो स्वर्ग के लायक नहीं है वो तो विष पीना छोड़ते ही नहीं है। अब वो स्वर्ग के लायक ही नहीं है तो वो विष पीना छोड़ते ही नहीं है। तो बाप कहते हैं बच्चे अभी ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, ये विकार तुमको आदि मध्य अंत दुखी बनाते हैं। विकार क्या करते हैं, आदि मध्य अंत दुखी बनाते हैं। क्या तुम इस एक जन्म के लिए विष पीना नहीं छोड़ सकते हो। कल भी बाबा ने कितना कहा, एक मैं आया हूँ तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया बनाने, पर खाली ये काम विकार छोड़ो तो बाबा की खातिर नहीं कर सकते हम। वो भी देखो एक जन्म का बाकी कितना जन्म, अब कितना समय तो बीत गया, बाकी थोड़ा सा समय। तो बाबा कहते हैं क्या विष पीना नहीं छोड़ सकते हो एक जन्म के लिए? मैं तुमको अमृत पिलाकर अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। विष बिगर सिगरेट शराब बिगर रह नहीं सकते हो। देखो बाबा को कैसे कहना पड़ता है। मैं बेहद का बाप तुमको कहता हूँ बच्चे, इस एक जन्म के लिए पावन बनो तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करना ये बाप का ही काम है। तो बाप आया हुआ है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुख धाम शांति धाम में ले जाने। अभी सब धर्म विनाश हो जाएंगे तो क्या रहेगा? यहाँ सब धर्म विनाश हो जाएंगे, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परम पिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। तो बाप है महाकाल, कालों का काल, अकाल मूर्त। वो काल तो एक दो को ले जाएंगे और मैं तो सभी आत्माओं को ले जाऊंगा, इसीलिए महाकाल कहते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं, जो भक्ति मार्ग में सुनते थे पढ़ते थे लेकिन अर्थ तो समझते नहीं थे, तो बाबा ने वो समझा करके कितना समझदार बना दिया है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है। क्या करना है इस अंतिम जन्म में? विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है, पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरा विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए क्या करना होगा? विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है, पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। वरदान, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है ना, कोई भी आकर्षण करने वाली चीज जो उसके आसपास होते हैं उन सबको आकर्षित करती है वो चीज, वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो क्या होगा? तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। कोई आकर्षित करने वाली चीज अपनी ओर आकर्षित करती है, तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों की भी जो वृत्ति अलौकिक होगी रूहानियत वाली होगी तो आपका भी प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात बाबा किसको कहते हैं अलौकिक वृत्ति? अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारे पन की स्थिति, ये है अलौकिक वृत्ति, न्यारे और प्यारे पन की स्थिति। ये स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसे अलौकिक शक्ति शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती है। स्लोगन, सदा स्वमान की सीट पर सेट रहो, स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानती रहेगी, सर्व शक्तियां ऑर्डर मानती रहेगी। कब? जब स्वमान की सीट पर सेट होंगे तो सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानती रहेगी। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो के अंतर्गत ज्ञानी बनने के साथ साथ और क्या बनना है? ज्ञानी तो बाबा कहते बन गए, हाँ, ज्ञानी बनने के साथ साथ स्नेही भी बनो, स्नेही बनो। स्व की सेवा विश्व की सेवा का आधार है। हाँ, कैसे करेंगे? स्व की भी सेवा विश्व की भी सेवा, हाँ, उसमें आधार है। सेवा में सिर्फ दो शब्द याद रखना। कैसे होगी स्व की सेवा और विश्व की सेवा? तो बाबा कहते हैं दो शब्द याद रखना। एक, मैं निमित्त हूँ, निमित्त हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ, बस बाबा करा रहा है। एक, मैं निमित्त हूँ, तो निमित्त हूँ और फिर निर्माण बनना है, नम्र बनना है। तो निमित्त तो बाबा करा रहे हैं, जिम्मेदारी तो है लेकिन बाबा करा रहे, और दूसरा निर्माण बनना है, नम्र बनना है। इससे एकता का वातावरण बनेगा। अभिमानी होंगे तो थोड़ी एकता का वातावरण बनेगा, कहेंगे इसके तो पास ही नहीं जाना है, पर नम्र होंगे तो जरूर लोग आएंगे, आकर्षित होंगे। तो इससे एकता का वातावरण बनेगा, एक दो के सहयोगी बनेंगे, तेरे मेरे की मान शान की टकराव की भावनाएं समाप्त हो जाएगी। क्या होगा? जब एक दो के निकट आएंगे तो बाबा कहते सहयोगी बनेंगे, तो मेरे तेरे की मान शान की टकराव की भावनाएं समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा को भोग लगेगा, हम सब बैठे रहेंगे बाबा को, और डबल विदेशी भाई बहनों का प्रोग्राम भी सुना देते हैं।
ओम शांति, ओम शांति। समय प्रति समय हम हमारे ब्राह्मण परिवार के जो आत्माएं संपन्न बनकर के वतनवासी हो जाती है उनका समाचार सुनते ही रहते हैं। आज सवेरे 4:30 बजे कुल्लू के कृष्णा बहन जी ने अपना पुराना देह त्याग कर बाबा की गोद ली। बहन जी बहुत पुराने साकार बाबा और मम्मा की पालना लिए हुए, और अनेक वर्षों से आपने कुल्लू में सेवाएं दी, पंजाब में अनेक स्थानों पर पहले सेवाएं दी, बाद में काफी समय से कुल्लू में ही रह रहे थे, और अभी कुछ समय से तबीयत ऊपर नीचे चलती रहती थी। कुछ समय आपने ग्लोबल हॉस्पिटल में रह करके स्वास्थ्य लाभ लिया, अभी वर्तमान समय आप ट्रोमा हॉस्पिटल में थे शांतिवन में, और आज ही सुबह आपने अपना देह त्याग कर दिया। और अंतिम संस्कार कब होगा, किस प्रकार होगा, वह प्रोग्राम बाद में बताया जाएगा। अभी हम 2 मिनट योग में बैठ करके दीदी जी की आत्मा को योगदान देंगे।
Om Shanti. I will quickly announce today's program for double foreigners. Please, double foreigners, please pay attention. This morning, 9:30 to 10 a.m., there is Murli Study Circle with Sister Sarah. Murli Study Circle with Sister Sarah in Training Center, room number 1 of Gyan Sarovar. Murli Study Circle with Sister Sarah, 9:30 to 10. And then 9:30 to 10:15, Sudesh Didi is going to meet all those from UK, Europe and Middle East. So all those from UK, Europe and Middle East, please be in the meditation hall by 9:30 this morning, where Didi Sudesh will meet all of you in meditation hall of Gyan Sarovar. Then 9:30 to 10:15, Sister Manju will meet all Tamil speaking group, Manju Ben will meet in training center room number 8 of Gyan Sarovar. So 9:30 you have to be there in training center room number 8 of Gyan Sarovar, all Tamil speaking group. And then the general class 10:30 to 11 meditation, 11 to 12:15, the topic is mental health session. Mental health session by Sister Iris, and the topic is passing in the topic of love for the self. Passing in the topic of love for the self in the Harmony Hall of Gyan Sarovar, 11 to 12:15 in the morning. And then 4:30 to 5 o'clock journaling in training center room number 1 of Gyan Sarovar. And 5:30 personal meeting with Sister Manju Sister Manju's office. And then general class in the evening, 5:30 to 6 meditation, 6 to 7, Sister Linda is going to interview Sudesh Didi. And the topic is the role of bestowing throughout the cycle. The role of bestowing throughout the cycle, Sudesh Didi being interviewed by Sister Linda. And then 7 to 7:30 meditation, all in the Harmony Hall of Gyan Sarovar. Om Shanti. And those double foreigners who are departing soon, after Bab Dada, if they are departing soon, then on the 14th, if they are departing soon on the 14th and will be shifting to Shantivan today, and you have already given in your names, please bring your luggage to transport department by 9:45 a.m. so that luggage can be loaded and bus can leave for Shantivan by 10 a.m. So if you are departing soon after Bab Dada's meeting on the 14th and will be shifting to Shantivan today, so please bring your luggage to transport department by 9:45 so that you can leave by 10 a.m. Those who arrived yesterday should submit their government form C to the deposit office after breakfast. And all double foreigners should carry their double foreigner's badge with themselves at all times. If you change your room for any reason, please make sure to inform the deposit office. Om Shanti.
Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. आप डबल विदेशी भाई बहनों के बारे में सोचना सुन रहे हैं. Because in this group, so many double foreign sisters and brothers are coming. And so many NCs are also coming. So that is why double foreign sisters and brothers are very, very cooperative. And they always cooperate in Baba's task. Those who are leaving on 14th and 15th. So they accepted Baba's love. They will vacate their room and others will get those rooms. give a big hand to those sisters and brothers who will be shifting today. Give a big, big hand. Not a small hand, big. And they are Baba's lovely children. And they will get more and more blessings from Baba. I will give special remembrances from all of you to Baba. And Baba will give blessing to all of you. भारतवासी भाई बहने ध्यान दें, वह भारतवासी भाई बहने जो एक रात या दो रात के लिए पांडव वन में हाथ खड़ा करो, करो हाथ खड़ा, अच्छा, और जो भारतवासी भाई बहने एक रात दो रात के लिए आए हैं, उनसे फिर से बता रहे हैं कि वह भी आज नाश्ते के बाद वापिस, क्योंकि सारा कार्यक्रम शांतिवन में वहां जाकर के अटेंड करना है, और वह भाई बहने जो अभी सुबह क्लास में वो हाथ खड़ा करें, अच्छा, जो भी पार्टी के भाई बहने हाथ खड़ा करो, सभी पार्टी के भाई बहने जो भी आए हैं वो सब के सब को पहले से बता दें, सभी का सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में होता है, किसको भी नीचे बैठ करके नाश्ता नहीं करना है, क्योंकि वहां पर थोड़ा कारोबार चल रहा है, जगह बहुत कंजस्टेड है, किसी को भी नीचे नहीं बैठना है, ऊपर के ही डाइनिंग हॉल में जाकर के नाश्ता करना है। और जो भाई बहने नीचे से भोग के लिए आए वो हाथ खड़ा करे, भोग के लिए आए पीछे से, ठीक है, अच्छा, अभी भोग के लिए आयो हाथ खड़ा करें, देखिए सब कितने भोग के लिए, नीचे तो भोग लगता है, फिर भी यहाँ पांडव वन में आते हैं, वेलकम है, बाबा का घर है, लेकिन बाबा के तीनों स्थान एक ही हैं, तो तीनों ही स्थान पर लगता है, तो वहां बैठ के करते हैं तो और ज्यादा मिलता है, यहाँ बैठ के भोग लगाते तो और अच्छा मिलता है, इसलिए सदा ही आपका स्वागत है। और अभी हम सभी प्यारे बाबा के पास जाएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, और भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे, और उसके बाद चार लाइन में अमृत होगा, एक लाइन भाइयों की होगी, एक लाइन डबल विदेशी भाई बहनों की, और दो लाइनें अन्य बहनों की होंगी। डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स will make line for getting nectar from brother side where there is a camera. They will come in line to take nectar from brother side. Baki jo bhi bhai bhene, bhai bhaiyon ki taraf, mataye mataon ki taraf hongi, lekin mataon se hamara nivedan rahega, sari nahi khadi hongi, jagah kam hai, thode thode hi aakar ki amrit piyenge. Aur abhi hum sabhi प्यारे बाबा के पास जाते हैं। कई भाई बहने शांतिवन से आते ना, कई नए नए आते, उनको पता नहीं होता है गुरुवार के दिन अमृत मिलता है, टोली नहीं मिलती है, वो टोली के लिए आ जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है कि कल टोल अभी अमृत मिलेगा, टोली यहाँ नहीं मिलेगी, आप सबको भोग मिलेगा, नाश्ते के टाइम भोग ही लेना है, टोली के लिए किसी को भी टोली डिपार्टमेंट में नहीं जाना, इस बात का ध्यान रखें। अभी हम सब चलेंगे बाबा के पास, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, और उसके बाद बाबा जो सुनाएंगे सुनेंगे, फिर उसके बाद चार लाइन में अमृत होगा, आप पिलाएंगे गोपी की जरूरत ही नहीं ना। अभी पांच लाइन में अमृत होगा, शीलू बहन विल गिव नेक्टर टू ऑल डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, और बाकी तीन लाइनें होंगी टीचर्स बहने पहली लाइन, दो लाइनें माताओं की होंगी, और पांच लाइन में अमृत मिलेगा, एक लाइन भाइयों की, वन लाइन फॉर डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, शीलू बहन विल गिव नेक्टर टू डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, बाकी हमारी मधुबन की तीन बहने अन्य तीन लाइनों में बहनों को अमृत पिलाएंगी। ओम शांत।
पल अविनाशी होते
होते हैं वो पल अविनाशी होते हैं हर पल को सफल बना देंगे हर पल को सफल बना देंगे तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं
शांति। आज सतगुरुवार के दिन भोग के बाद बाबा को सबकी याद प्यार देते हुए जैसे बाबा को सामने में गई तो क्या देखती हूँ कि बाबा तो वतन में दिखाई नहीं दे रहे थे। काफी समय तक मैं बाबा का इंतजार कर रही हूँ और मन ही मन सोच रही हूँ कि मैं तो भोग लाई हूँ और भी संदेशियाँ भोग लेकर के वतन में आए हैं, लेकिन बाबा कहाँ हैं। और कुछ समय के बाद देखती हूँ बाबा दूर से आए। बोला, बच्ची क्या सोच रही हो? मैंने कहा, बाबा आप क्या विश्व भ्रमण पर गए थे? बाबा मुस्कुराए। बाबा ने कहा, आज बाबा विशेष एक कार्य में बहुत बिजी थे। और बाबा फिर एक सेकंड शांत हो गए। तो मैं सोचने लगी, ना जाने कौन सा कार्य होगा। बाबा ने कहा, बाबा ने भी वतन में एक ऐसा ग्रुप तैयार किया है जो बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए और अनेक प्रकार की सेवाओं में बच्चों को मदद करने के लिए विश्व परिवर्तन के कार्य में साइंटिस्ट को गाइड करना और अन्य जो लोग हैं, धर्म नेताएं हैं, उनको ऐसी रास्ता दिखाने का गाइड करना, अन्य लोगों को भी आथक देने के लिए बाबा ने एक बहुत बड़ा ग्रुप तैयार किया है। और वो वतन से ही बाबा के साथ मिलकर के साइंटिस्ट को भी विशेष प्रेरणा देते, क्योंकि साइंस भी आपके लिए सतयुग में तैयार चाहिए, बच्चों के लिए है। और धर्म संस्थापक धर्म के लोगों को भी बाबा से अपना अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। समाज के अन्य लोगों को भी बाबा से अंजलि लेने का भी अधिकार है। तो इतने में क्या देखती हूँ कि इतना सुंदर फरिश्तों का झुंड था और वो झुंड एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, हाथ मिला करके रास करते हुए, और फरिश्तों के झुंड से चारों ही तरफ लाइट की किरणें पूरे विश्व में फैल रही थी। और विश्व में जैसे वो लाइट की किरणें फैलती तो रंग बिरंगी लाइट से हर एक के पास जो भी मनोकामना है वो उनको पूर्ण होती दिखाई दे रही थी। बाबा ने कहा, एक तरफ भयानक स्थिति, एक तरफ भयानक नजारे और एक तरफ है प्राप्ति की स्थिति। और प्राप्ति भी साथ साथ है, भयानक नजारे भी साथ साथ हैं और भयानक परिस्थितियां भी मनुष्य के सामने हैं। ऐसे टाइम पर संदेश वाहक जो है वो तुम बच्चे हैं। बाबा ने ग्रुप तो तैयार किया है। फिर बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि बाबा के पास तो ग्रुप टाइम तैयार रहता है, लेकिन अभी तुम बच्चे क्या कर रहे हो? मैंने कहा, बाबा अभी सबका लक्ष्य तो यही है कि हम बाप को प्रत्यक्ष करें, बाप की तरह संपन्न बने। तो बाबा ने कहा, बहुत अच्छा है। बाबा ने वहां पर सबको इमर्ज किया। बाबा ने कहा, बच्चों का लक्ष्य भी महान, पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं, अभी बाबा बच्चों की परीक्षा लेंगे। तो बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को फरिश्ता बना दिया। फरिश्ता बना करके हर एक के हाथ में एक बहुत सुंदर ब्लेसिंग था, लंबा लंबा, वो दे दिया। बाबा ने कहा, देखो इससे आप कैसे ऐसे समय पर साकाश
और ऐसे समय पर बाप की प्रत्यक्षता और ऐसे समय पर आपके चेहरे के द्वारा बाप का उनको अनुभव हो। तो जैसे सबको दिया, किसी के हाथ में वरदान का ऐसे हिलता था, किसी के हाथ में जिसके द्वारा विशेष पावर थी, ऐसे मैजिक स्टिक होती है ना, वो थी, उस मैजिक स्टिक को घुमाते थे तो वैसे वैसे हर एक के पास अनुभव होता था। किसी के मैजिक स्टिक काम नहीं करती थी, किसी के मैजिक स्टिक ढीली थी, किसकी एकदम नीचे गिर गई, तो बाबा ने कहा, बाबा बच्चों को क्या बना रहे हैं, बाबा बच्चों को ऐसा बना देते हैं कि बच्चे बिल्कुल दुनिया के सामने ऐसे सिद्धि स्वरूप बने, उनको देखते ही बाप की प्रत्यक्षता, तो क्या उनके जो ऐसा अनुभव हो कि हमें भी बाबा के साथ का अनुभव करना है। फिर बाबा ने क्या किया, मैंने कहा बाबा ये स्टिक तो गिर रही है, बाबा ने कहा फिर ध्यान से पकड़ो। तो जैसे उस स्टिक को हाथ में लेते थे, उस स्टिक के नीचे एक तरफ लिखा हुआ था क्लियर बुद्धि और दूसरी तरफ लिखा हुआ था क्लीनिंगनेस और तीसरी तरफ ऊपर लिखा हुआ था बाबा मेरी बैकबोन है। ऊपर जो टॉप पर था उसके ऊपर बहुत सुंदर फ्लावर टाइप था, बाबा ही मेरा बैकबोन है। फिर दोनों तरफ एक छोटे छोटे पंख थे, एक में लिखा हुआ था विदेही और निर्विघ्न भाव। तो बाबा ने कहा जब तक बच्चों की बुद्धि में क्लैरिटी नहीं है, क्लीन नहीं है, तो कितना भी बाबा बच्चों को वरदानों से भरपूर करते हैं तो उससे अपना भी अनुभव नहीं कर पाते, दूसरों को भी नहीं करा पाते हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चों को सदा ये ध्यान रखना है कि निमित भाव बाबा ही मेरा बैकग्राउंड है, ये बाबा का कार्य है, तो हर समय निर्विघ्न और स्थिति का अनुभव करेंगे। इसलिए बाबा हमेशा बच्चों को बार बार पक्का करा रहे हैं, अभी और बातों में बुद्धि को ना लगा के बुद्धि को क्लियर रखो, क्लीन रखो। तो जैसी क्लियर रखेंगे हर इशारे की प्राप्ति भी होगी और उसके द्वारा बाप का भी साक्षात अनुभव करा सकेंगे। तो बाबा ने कहा बाबा देख रहे हैं शिव जयंती पर बच्चे बहुत ही प्यार से कई कार्यक्रम कर रहे हैं और कई प्रोग्राम बना रहे हैं, वो तो बच्चों को करना ही है, लेकिन अपनी आंतरिक स्थिति को क्लियर क्लीन रखना है, बाबा ही बैकबोन है और निमित भाव से चले। फिर तो बाबा ने सबको बहुत प्यार करते हुए, मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया, भोग के बाद जिनके संदेश थे उनको दिया, फिर बाबा को मैंने बताया। बाबा ने कहा जो बच्चे दूसरों को आगे रख के त्याग करते हैं, समाचार सुनाया कैसे अपना स्थान खाली करके दे रहे हैं, तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे जो दूसरों को चांस देते हैं, बाबा भी उन्हें कई गुना पदम गुना उन्हें और भरपूर करते हैं। फिर बाबा ने सबको इमर्ज करते बहुत प्यार कर रहे थे, कहा ये हां जी का पाठ करने वाले हैं, हां जी का पाठ कर पक्का करने वाले बच्चों को बाबा अपने दिल में समा लेता है। फिर सबको याद दिया ओम शांति। अभी पांच लाइन में अमृत होगा, एक लाइन भाइयों की, वन लाइन फॉर डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स फ्रॉम कैमरा साइड, बाकी तीन लाइनें होंगी। चलो
दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, देखता रहूं हो बाबा देखता रहूं, देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें 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 देखता रहूं, देखता रहूं हो बाबा देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं, बसाया है दिल में तुम्हें हम, जब से बसाया है दिल में तुम्हें हम, तब से मन नाचे मेरा खुशियों में हरदम, तब से मन नाचे मेरा खुशियों में हरदम, खुशियों के झूले में, खुशियों के झूले में तो झूलता रहूं, झूलता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, देखता रहूं हो बाबा देखता रहूं, देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, सोच के आता हूँ तुमको हाल सुनाऊं, सोच के आता हूँ तुमको हाल सुनाऊं, पास तेरे आते ही बाबा सब भूल जाऊं, पास तेरे ही आते बाबा सब भूल जाऊं, एक तेरी महिमा, एक तेरी महिमा में गाता रहूं और गाता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, देखता रहूं हो बाबा देखता रहूं, बाबा देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, यादों में तेरे में खो जाऊं ऐसे बाबा बाबा बाबा।